Thank you. shall be.
आज बाबा ने पाप और पुण्य दो शब्द को बदले चलाए, पाप पुण्य शुभ अशुभ सत्य असत्य नित्य अनित्य, ये शब्द कोई नया नहीं है। संसार में ऐसे कई महान आत्माएं हैं, महापुरुष हैं जिन्होंने इनको परिभाषित किया है। तो पाप कैसे कहेंगे और पुण्य कैसे कहेंगे? यथार्थ है वो पुण्य है, जो अयथार्थ है वो पाप है। वो कौन निर्णय करेगा यथार्थ कौन है और अयथार्थ?
पुण्य आत्म निर्णय करेगी।
फिर भी बाबा ने अब तक ज्ञान किसको कहा जा सकता है?
ज्ञान नहीं आत्मा को
कौन से खराब निगेटिव है कौन से पॉजिटिव है उसी टाइम पता चलता।
पुण्य की परिभाषा
भावना,
शुभ भावना पुण्य है,
शुभ भावना के
अशुभ भावना
पाप है। तो
संसार पाप किसे कहता है? ज्ञान के बाहर
बाहर की बात,
दुख देना पाप,
झूठ
बोलना, चोरी करना, सजे करना,
हेरा फेरी करना,
हेरा फेरी, नफरत,
अंदर बाहर एक दूसरा,
और पुण्य
पुण्य
सौ कन्या खिला दो भोजन उनको,
दान देना
उनको बहुत बड़ा पुण्य,
तीर्थ यात्रा करना पुण्य, दान पुण्य है,
क्या दान करना,
जीवन का मार्ग दे देना, जीवन दान दे देना, किसी की जान बचा देना,
चार धाम यात्रा भी पुण्य,
चार धाम की यात्रा
सहयोग देना,
समय पर सहयोग देना पुण्य, किसी को खुलाना, अन्न दान, भू दान, कन्या दान, गौ दान, सर्व प्रकार के दान पुण्य, नेत्र दान, शरीर के अंगों का दान पुण्य, और ऐसे कर्म जो कि आत्मा को स्वर्ग ले जाए वो पुण्य है, जो कर्म आत्मा को नर्क की ओर ढकले वो पाप। पुण्य कब होते हैं और पाप कब होते हैं? पुण्य की अवस्था में किए जाते हैं और पाप की अवस्था में किए जाते हैं। अज्ञानता अगर है तो पाप होंगे, ज्ञान है तो पुण्य होगा। अगर ज्ञानी भी पाप करे तो उसको कहाँ किस श्रेणी में है वो? माँ बाप तो है पर वो क्या कहेंगे?
घोर पाप
तो ठीक है। किस अवस्था में पाप किए जाते हैं?
ज्ञान की विस्मृति अगर है,
विस्मृति
तो पाप हो जाता है।
ज्ञान की विस्मृति जहाँ पर है वहाँ पाप है, जो मूर्छा की अवस्था है वो पाप है। मूर्छा हो गई है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है और उस समय मूर्छित है आत्मा, तो वो पाप। तो जागरण की अवस्था जो है वो है पुण्य। जागरण की अवस्था में जो कुछ किया जाता है वो संपूर्ण पुण्य, जो मूर्छा की अवस्था में किया जाता है वो पाप है। कोई जानबूझकर गड्ढे में गिरता है क्या? संपूर्ण होश में व्यक्ति है, सामने गड्ढा है तो उसमें कोई गिरता है? संभावना बहुत कम है। तो संपूर्ण जागरण, संपूर्ण स्वबोध, संपूर्ण जागृतता जहां है वहां पर पुण्य, जहां पर मूर्छा है बद्धावास, क्या बद्धावास अवस्था है, मूर्छित अवस्था है वहां पर पाप होता है।
बद्धावास
तो ऐसी अनकॉन्शियस सेमी कॉन्शियस स्टेट, तो वहां पे पाप होता है। विस्मृति, स्मृति और विस्मृति का क्या रखे? स्मृति का स्विच ऑन, स्मृति का स्विच ऑफ, ये शब्द है। उसमें एक बताया ना, एक व्यक्ति है कि जो एक साधु के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपना शिष्य बना दो। साधु कहता है तुम्हारा स्वागत है, पर वो कहता है पर आपको पता है मैं, मेरे में बहुत त्रुटियां है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तो वो कहता है परमात्मा ने तुम्हें अपने सभी पापों के सहित स्वीकार किया है, तो मैं भी तुम्हें अपने सर्व पापों के सहित स्वीकार करता हूँ। पर वो कहता है कि अब तुमको पता है मैं जुआ भी खेलता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ, मैं व्याभिचारी हूँ। तो बोलता है इसके बावजूद भी जैसे परमात्मा तुम्हें परमात्मा ने तुम्हें स्वीकार किया, मैं भी तुम्हें तुम्हारे सर्व पापों के साथ मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ।
बहुत बड़ी बात है।
पर क्या तुम भी मुझे स्वीकार करोगे? तो वो आदमी आश्चर्य होता है कि क्या कहूं मैं आज इसको। पर वो कहता है मैं तुम्हें स्वीकार तो करता हूं, पर तुम्हें एक बात करनी पड़ेगी कि जब भी तुम पाप का कोई भी काम करो तुम ऐसा समझना कि मैं वहां सामने उपस्थित हूं, मैं तुम्हारा सदगुरु, तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तो जब भी पाप करोगे तो ये समझना कि मैं सामने उपस्थित हूँ। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति वापस आया तो वो पूछता है क्या तुम्हारे पाप का क्या हाल है? तो बोलते मैं कैसे पाप करता, जब भी मैं पाप करने जाता आपकी आंखें मेरे सामने आ जाती, मैं नहीं कर पाया कोई भी पाप। मतलब जब संपूर्ण होश की अवस्था है, जागृत अवस्था है, तो जानबूझकर व्यक्ति गड्ढे में नहीं गिरता। वो सारे कर्म जो मूर्छित अवस्था में किए जाते हैं, जो यहाँ पे मूर्छा अर्थात परमात्मा ज्ञान से मूर्छित, यहाँ मूर्छित अवस्था अर्थात देहभान की अवस्था, वास्तविक स्वरूप है आत्मा, उससे मूर्छित अवस्था, तो हम सारे दिन भर बेहोश है एक्चुअली। जो कुछ कर रहे हैं बेहोशी में कर रहे हैं सारे कर्म। इसके लिए जो होश में किए हुए कर्म है वही पुण्य कर्म है, जो बेहोशी में किए हुए कर्म है वो पाप कर्म है। और पुण्य और पाप की अवस्थाएं कौन कौन सी है? ये तो ये एक है होश और बेहोशी, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान में किए हुए पुण्य, अज्ञान में किए हुए स्मृति में किए हुए, विस्मृति में किए हुए। और भी कुछ अवस्थाएं जिस पर पाप और पुण्य निर्भर करते हैं?
अगर स्मृति है लेकिन स्मृति प्रैक्टिस नहीं है, स्वरूप नहीं है, अगर तो भी पाप होने के जानते हैं।
स्मृति है परंतु पर स्मृति रहेगी तो करेंगे।
अगर स्मृति ज्ञान की कई बातों की प्रैक्टिस जरूरत है,
बाबा विवेक है तो भी विवेक का खून करता है
वो उस हिसाब से।
भाव किसी को अगर सुख देते हैं तो मर्यादा तोड़ के सुख देते हैं।
जैसे ड्रामा का ज्ञान बाबा ने दिया कि ड्रामा में कुछ भी खराब नहीं है, हर चीज अच्छी है, फिर भी हम क्यों क्या और खराब कहते हैं उसको, पता है हमें कई बार याद भी होता है।
स्वार्थ की दृष्टि से देख रहे हैं इसके लिए, तो एक ये भी कहा जा सकता है जो भी स्वार्थ की दृष्टि से किए हुए कर्म है वो सारे पाप, जो निस्वार्थ भाव से जो कुछ कर्म किया जाता है वो सभी पुण्य। फिर और एक भाव, किस भाव से किए जा रहे कर्म। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक नर्तकी है, एक साहूकार का घर है, साहूकार के घर के आगे नर्तकी का घर है, वो तो नृत्य कर रही है, नाच रही है, ये तो अच्छे कर्म कर रहा है। परंतु जब दोनों की मृत्यु होती है और दोनों ऊपर गए तो यमराज ने सजा सुनाई, जो नर्तकी है वो स्वर्ग में जाएगी और जो साहूकार है वो नर्क में जाएगा। तो साहूकार परेशान होता है, पूछता है ऐसे कैसे, मैंने तो अच्छे ही कर्म किए सारे, और ये तो नर्तकी है, ये तो गणिका है, इसने तो सब बुरे कर्म पाप कर्म किए। तो उसको कहा जाता है वो भले नर्तकी है परंतु तुम साहूकार होते हुए भी, ब्राह्मण विप्र होते हुए भी, तुम्हारा ध्यान हमेशा नर्तकी की तरफ रहता था। तुम्हारे मन में वासनाएं निहित थी, तुम्हारा मन वासना से ग्रस्त था, इस वजह से तुम नर्क में जाओगे। और वो भले ही नर्तकी थी फिर भी वो मजबूरी से वो कर्म करती थी, उसका संपूर्ण ध्यान धर्म की तरफ था, नृत्य करना उसकी मजबूरी थी, उसका जन्म ही उस घर में हुआ था, तो उसका भाव संपूर्ण धर्म में, वो धर्मनिष्ठ थी। वेश्या होते हुए भी, तुम धार्मिक होते हुए भी तुम्हारी प्रवृत्ति विकार की थी, इसके लिए ये नर्क में जाएगा, ये स्वर्ग में जाएगा। तो भाव के आधार से भी विकार और निर्विकारी, संपूर्ण सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? ज्ञान के आधार से संपूर्ण पवित्रता ही पुण्य, काम ही सबसे बड़ा पाप,
दृष्टि भी बहुत बड़ा पुण्य।
इवन ईसाई धर्म में भी कहा है सबसे बड़ा पाप काम को ही माना गया है, क्योंकि उसमें जो दिखाया है सबसे पहले आदम और बीवी, उनका जो गिरना है वो काम विकार से ही हुआ है, इटर्नल सिन उसको कहते हैं वो लोग। तो वहां पर भी सबसे बड़ा पाप काम ही,
तो
नहीं करते वो अलग बात है। तो आत्माएं तमो प्रधान हो गई तो कैसे कर सकते।
तो नंस तो होती है,
नंस तो रहती है,
रोमन कैथोलिक सेंट्स नंस, इनका अगर जीवन देखा जाए और जो संसार के क्रिश्चियन है बहुत अंतर है उनका, तो जीवन में संपूर्ण ब्रह्मचर्य है जो रोमन कैथोलिक सेंट्स होते हैं उनके। तो भाव का भी आधार से पाप और पुण्य, स्वार्थ निस्वार्थ, स्मृति विस्मृति, मूर्छा जागरण, और भी कुछ है जिससे पाप और पुण्य बनते हैं? वृत्ति,
कर्म के फल से अनभिज्ञता का,
कर्म के फल की अनभिज्ञता। व्यक्ति अगर कर्म के फल से अपरिचित है, अबोध है उस बात से, तो वहां पर भी पाप होंगे। परंतु पाप पुण्य का कर्म फल से बहुत घनिष्ठ संबंध है। कर्म के फल के आधार से ही बताया जा सकता है कि ये कर्म पाप है या पुण्य है। फल को देख कर ही बताया जा सकता है कि ये पाप था या पुण्य था।
फल को स्वीकार करना, कर्म के फल को स्वीकार करना,
ये कच्चा फल
वो लेना है, वो मान, बस मान अपमान इस तरह के, अगर वो तो है विश्वार्थ है, मान की इच्छा
भी आत्मा में शक्ति नहीं है।
हाँ, जैसे दुर्योधन की अवस्था है, दुर्योधन अंत में कहता है कि मुझे क्या, मुझे पता नहीं पाप क्या है पुण्य क्या है। उसके साथ उसका संवाद है भीष्म के साथ, भीष्म पर्वत महाभारत, कि क्या मुझे पता नहीं पाप क्या है पुण्य क्या है, मैं जो कुछ करता रहा पांडवों के साथ, मुझे हर समय यह स्मृति थी कि यह गलत है, हर समय ये मुझे पता था कि यह पाप है, पर मुझ में शक्ति ही नहीं थी कि मैं अपने आप को रोक सकूं। संस्कारों के वशीभूत थी आत्मा,
संस्कारों का जो फोर्स होता है
वो इतना तीव्र है कि ज्ञान वहां पे कहां से कहां फेंक देती है उस समय। रावण क्या कम ज्ञानी था? रावण को तो महापंडित दिखाया हुआ है, महाज्ञानी महापंडित, फिर भी अहंकार, फिर भी काम। रामायण के पूर्व में अगर दिखाया गया,
लास्ट लड़ाई करने जब जाता है ना राम से, ये रावण तो शिव के पास जाता है और वहाँ बोलता है मुझे पता है तुम उनका साथ दोगे और आप चाहते हो कि मेरा अहंकार खत्म हो जाए, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं अगर बचा तो मैं आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा लेकिन अहंकार कभी नहीं छोड़ूंगा।
बोला शिव को, बोलता
अहंकार के वशीभूत जो कुछ कर्म है पाप है, क्रोध के वशीभूत जो कुछ कर्म है पाप है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मद मत्सर द्वेष दम्भ घृणा
नफरत
तिरस्कार
नीचा दिखाने,
दूसरों को नीचा दिखाने की भावना के वश जो कुछ कर्म किए जाते, बदला कमेंट, ये सारे जो कर्म है सूक्ष्म अति सूक्ष्म, स्थूल से लेके सूक्ष्म अति सूक्ष्म तक पाप में आ जाते। आज तो बाबा ने जो पाप की परिभाषा कही है वो तो सर्वश्रेष्ठ है कि तुम अब इतनी महान आत्मा, इतनी जिम्मेवार आत्मा है, अपनी जिम्मेवारी को तुम भूल रहे हो, आत्माओं को वंचित रख रहे हो, अपनी कमजोरियों को तुमको अभी भी अनुभव हो रहा है, तो शर्म नहीं आती? ये पाप को बाबा की परिभाषा ये है पाप की,
खुशी से मरो।
तो आज की मुरली पीछे से शुरुआत करें, आगे से शुरुआत पीछे से शुरुआत करके चलो। पार्टियों से मुलाकात, लास्ट पैराग्राफ किसके ऊपर है? कर्म के ऊपर। मनोज भाई कैसे कर्म करने, क्या कहा बाबा ने? जैसे कर्म
हम करेंगे हमें
देखेंगे, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। हम कौन है ड्रामा की?
हीरो
एक्ट्रेस। तो हमारे कर्म कैसे हो, लोग क्या कहे हमारे कर्म?
वंस मोर
कहे। हम सब कौन है? विशेष आत्माएं। हमारा धर्म विशेष, हमारा कर्म विशेष, हमारे नेचर विशेष, हमारा जन्म धर्म कर्म विशेष और नेचर विशेष। साधारणता हमारी नेचर नहीं है। सोमवार में वरदान था, मंडे क्या था, ट्यूसडे। साधारणता हमारी नेचर नहीं है, विशेषता हमारी नेचर है। ब्राह्मण जन्म विशेष है वरदान, ब्राह्मण जन्म विशेष, ब्राह्मण कर्म विशेष,
ब्राह्मण धर्म विशेष,
जन्म धर्म कर्म और नेचर सब कुछ विशेष है। इस संसार की हम विशेष आत्माएं हैं। तो कदम कदम सोच समझ कर रखो, क्या कहा बाबा ने? कदम कदम, हर कदम सोच समझ कर रखो, ऐसे कर्म करो कि सारे लोग क्या कहे, ये है विशेष आत्मा के कर्तव्य। तो एक एक कर्म पर अटेंशन, ये एक। दूसरा
संतुष्ट
संतुष्ट मनी। संतुष्ट मणि आत्मा है। कौन है बाप दादा की?
श्रृंगार
है, विजय नहीं, विजय रत्न है, वो तो दूसरा है। संतुष्ट मणि बाप दादा के श्रृंगार है। योगी जो होता है निरंतर संतुष्ट होता है, संतुष्ट सततम योगी, योगी निरंतर संतुष्ट होता है।
सततम
गीता के महावाक्य है, हमेशा वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होता, जो प्राप्त हो जाए उसी में वो संतुष्ट। ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो जो संतुष्ट आत्मा है वो कौन है? बाप दादा जी
श्रृंगार,
उनके मस्तक की चमक झलक पवन का चमक के लिए।
मणि नहीं, मस्तक की चमक
नहीं।
मंडे की मुरली में एक शब्द था पारस मणि, तुम सब पारस मणियां बनने वाले हो,
बहुत बड़े बड़े देवता बने,
तुम बड़े से बड़े देवता बनने वाले हो, छोटे मोटे देवता नहीं, बड़े बड़े देवता।
अब कब कहते हैं ना 12 तो 12
केवल तुम ही बन सकते हो। लॉ नहीं कहता कि क्रिश्चियन बने, लॉ नहीं कहता कि क्रिश्चियन विश्व की विश्व के मालिक क्रिश्चियन बनिए, लॉ नहीं कहता।
प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला ना, अगर जब तक बाप का नहीं बना स्वर्ग में जा नहीं सकता, यही रह जाएगा। आज ही बोला ना,
आगे एक दूसरी जगह बोला। तो जो संतुष्ट मणि है वो बाप दादा के श्रृंगार है, जो संतुष्ट मणि है वो सदा हर्षित है, जो संतुष्ट मणि है उनके बारे में और क्या कहा?
सदा मस्तक चमकता रहता है,
उनका मस्तक की चमक हमेशा चमकती रहती है,
चमकता रहता है।
और
संतुष्ट मणि हर प्रसिद्धि में संतुष्ट रहती है।
संतुष्टता को कनेक्शन बाबा ने भाग्य से जोड़ा, तुम नसीबवान आत्मा है, भाग्यवान आत्मा। जो नसीबवान होता है वो खुशी से नाचते रहता है,
खुशी से नाचते रहते हैं,
खुशी से नाचते रहते हैं, क्योंकि बाप को तुमसे मिलने से, बाप तुमको पाने से बाप को ज्यादा खुशी है, तुमको ज्यादा खुशी है, तुमको ज्यादा खुशी है, क्योंकि तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल गया, प्यासे की प्यास बुझ
गई,
तुमको ज्यादा खुशी होनी चाहिए, खुशी से तुम नाचते हो, तुमको भगवान मिला है। लास्ट संडे भी बोला था ना युगलों से मुलाकात, क्या कहा था? युगलों को बोला बाबा ने सिंगल बन जाओ, और कुमारों को बोलो युगल बन जाओ, उल्टा हिसाब है। कुमारों को बोला युगल बन जाओ और युगलों को बोला सिंगल बन जाओ,
क्योंकि सर सुनोगे अनुभव करना, उन्होंने कर लिया कुमार ने कहा
वो पुराना संबंध कैंसिल कर दो। युगलों को कहा कि वो संबंध कैंसिल, सिंगल से युगल बनो और उसके बाद में वापस सिंगल बनो। कुमारों को नहीं, युगलों को कहा कि युगल हो वो संबंध कैंसिल करो और सिंगल बनो, सिंगल बनने के बाद वापस युगल बन गए बाप के साथ।
और सही,
तो वहां पर बाबा ने उनको कहा है कि घर बैठे भगवान मिल गया, जो स्वप्न में भी नहीं था वो साकार हो गया, मेरे साथ भगवान है।
इससे बड़ा और भाग्य,
इससे बड़ा और कोई भाग्य है? तो आज संतुष्टता को भाग्य के साथ जोड़ा, नसीबवान खुश नसीब आत्मा हूँ, प्यासे की प्यास बुझ गई, भटकने वालों की तड़पन मिट गई,
ठिकाना मिल गया,
ठिकाना मिल गया, कहाँ कहाँ भटक रहे थे मनुष्य की, ये मनुष्य भगवान को ढूंढ नहीं सकता है, ये जब भगवान ने ढूंढा तब हम उसको मिले, हम कितना भी कोशिश करें उसको नहीं ढूंढ सकते थे, अल्पज्ञ है मनुष्य। उसके मन में संकल्प आया कि मैं इनको ढूंढू, जब उसके मन में संकल्प आया तब उसने हमको ढूंढा, उसके सिवा हम उसको नहीं ढूंढ सकते।
पहले बाप आया पीछे आप,
पीछे आप आए, लास्ट टाइम में बोला था पहले बाप आया पीछे आप आए, आज बोला पहले बाप को ज्यादा खुशी है या आपको ज्यादा खुशी है? आपको ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि प्यासों की प्यास बुझ गई, ठिकाना भटकने वालों को ठिकाना मिल गया, इसके लिए तुम संतुष्ट आत्माए। ये यहाँ पूरा हुआ, आगे
विजय रतन,
नहीं विजय रतन बोर्ड बोर्ड बोर्ड
तेरा खुशी का तेरा बोर्ड
बोर्ड।
तो आपका मस्तक,
तुमको खुश आबाद हो, तुम बाबा ने कहा खुश नसीब हो, खुश आबाद हो, खुश भी हो और आबाद भी हो। तो तुम्हारा चेहरा कैसा हो?
बोर्ड का काम करे,
कौन सा बोर्ड? चलता फिरता, चलता फिरता, चमकता हुआ, तो खुशी का खुशी, चलता फिरता चमकता हुआ चेहरा जो है, खुशी का चेहरा जो है वो है बोर्ड। तो एक बोर्ड क्या क्या करे? बाप का परिचय दे, एक एक बोर्ड बाप को दूसरों की याद दिलाए,
दिलाई।
और एक बोर्ड अगर इतनों को परिचय दे सकता है तो इतने सारे बोर्ड जब उतरेंगे तो जगह कम पड़ेगी। बाबा ने कहा ना जगह बढ़ानी पड़ेगी।
हाँ, एक बोर्ड इतना कर सकता है।
बाबा ने ऐसे अवतारों के लिए भी कहा है, अगर एक अवतार संसार में इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है तो तुम सब अवतार हो, इतने सारे अवतार एक साथ अगर उतर जाए संसार में तो महाक्रांति हो जाएगी।
ये जो पार्टी से मुलाकात पड़ी नहीं है
आप पता है, पर वो पढ़े ना पढ़े ये हमारे चिंतन का आधार
एक नहीं। ये इसको नहीं कह सकते हम पढ़ी नहीं
पढ़े नहीं, नहीं पढ़े से आपको क्या संबंध है।
नहीं उनको सुनने में नहीं आया ना आप क्या बोल रहे कहाँ से पढ़ रहे कहाँ से चल रहे हैं।
ये तो पार्टियों से मुलाकात है, छह पार्टियों से मुलाकात किया है बाबा ने। पीछे से चालू है
ये, पीछे से चालू है,
पहले
मैं तो ऊपर
नहीं, पर वो पढ़े ना पढ़े इससे हमारे चिंतन का आधार वो नहीं है। मधुबन में मुरली बजती है किसकी? परसों मुरली था ना, परसों ना स्वयं भगवान की, परसों की मुरली में था ना, तो भगवान सुना रहा है वो हर दिन सुना रहा है।
मधुबन कहते
हैं। हाँ, यही एक मात्र पाठशाला है जिसको मधुबन कहते हैं।
अब आप तो पढ़ेंगे नहीं तो साकार में आते हैं तो उसको कहा जाता है भाग्यशाली,
भाग्यशाली रथ
ब्रह्मा की बात ना।
रियली मधुबन में कोई ना कोई मुरली पढ़ रहा होता,
निरंतर योग चालू है, निरंतर मुरली पढ़ना भी चालू है। अगर कोई पढ़ नहीं रहा है तो चिंतन तो जरूर
कर रहा है, कोई ना कोई
मतलब ज्ञान और योग निरंतर
सेवा
वातावरण में प्रभावित है। अखंड ज्ञान और योग की, केवल योग की नहीं, ज्ञान की भी भट्टी चल रही है। कोई वहाँ बैठ के पढ़ रहा है, कोई वो किचन में वहाँ जो बोर्ड लगे वहाँ बैठ के पढ़ रहा है, कोई इधर इधर ज्ञान सुना रहा है,
म्यूजियम में चल रहा है,
कोई म्यूजियम में चल रहा है, तो कोई मनन कर रहा है, कोई चिंतन कर रहा है,
कोई आयत कर रहा है,
कोई बाजू में किताबें रखी हुई है सोया है तो वो भी तो जा रहा है वाइब्रेशन वातावरण में निरंतर
प्रकंपन,
तो ज्ञान के प्रकंपन ऊर्जा फैल रही है, तो ज्ञान से कभी रहित नहीं है मतलब। तो मुरली पढ़ी जाए या न पढ़ी जाए हमको तो पढ़ना ही है। तो खुशी का चेहरा बोर्ड का काम करे, बोर्ड का ये यहाँ पूरा हुआ। उसके बाद में तीसरा
विजयी,
विजयी विजय का तिलक नहीं, विजय का तिलक दूसरा है, ये दूसरा है, ये नशे वाला है। तुम सब कौन हो? रूहानी शस्त्रधारी हो, रूहानी शस्त्रधारी आत्मा शिव शक्ति हो। तो विजय सदा का झंडा सदा तुम्हारे मस्तक में लहराता रहे। जो रूहानी योद्धा होते वो दूसरा, वो जो रूहानी उनको लक्ष्य एक ही होता है विजय, और जो विजयी आत्माएं होते हैं फिर बाबा ने कहा वो सदा हर्षित रहती है, और जो विजयी आत्माएं वो कभी कहीं पर भी आकर्षित नहीं होती। वो था आकर्षण के ऊपर सारा पॉइंट, कहाँ कहाँ आकर्षण नहीं होती, कहीं पर भी आकर्षण, सब आकर्षण एक शिव बाबा में। सबसे सुंदर कौन?
शिव बाबा।
तो उसके अतिरिक्त और कोई भी आकर्षण उनको आकर्षित नहीं कर सकता। फिर वो उदाहरण दिया प्रेसिडेंट का, अगर प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी दे दे तो वो कुर्सी क्या है? कांटों की कुर्सी है,
कांटों की
कुर्सी। तुम ताज तख्त छोड़कर वो कुर्सी लोगे?
तो किसने बोला नहीं
नहीं ले सकते,
नहीं,
नहीं ले सकते।
वो तो आज है कल,
आज है कल नहीं, अल्पकाल का सुख है उसमें। ये तो ताज तख्त तुमको यहाँ मिल रहा है। फिर आगे विजय, विजय भव का वरदान दिया है बाबा ने,
जन्म से
ही वरदान है, सौगात है, गिफ्ट है। ये वरदान भी है, ये सौगात भी है। कौन सा? विजय भव।
जन्म के बहुत सारे वरदान,
जन्म के वरदान तो लिस्ट है बहुत बड़ी। जन्म से ही पवित्रता का वरदान, जन्म से ही योगी का
वरदान दे दिए।
जैसे जन्म लिया
वैसे मालिक
तुरंत सारे वरदान दे दिए। तो विजयी भव, आगे उस विजयी भाव में क्या क्या बोला?
बकरी और शेर।
तो माया तुम्हारे सामने शक्तिहीन है, माया जैसे कुछ
है ही
नहीं। मरी हुई चींटी आज तो बोला जैसे पहले से ही मरी हुई है। तो वहाँ पे बकरी शेर के सामने बकरी क्या है
मूर्छित,
तो तुम्हारे सामने भी माया क्या है
मूर्छित।
माया शेर की खाल पहन के आई थी।
फिर और एक दूसरा उदाहरण दिया कि माया क्या कर रही है, जब कोई आदमी थोड़ा सांस कम होता है तो और भी हट करता है, तो माया में भी सांस अभी कम है, वो दिखा क्या ऑक्सीजन पे है पृथ्वी तो तो माया भी अभी मरने वाली है परंतु वो फिर भी हट दिखाती है। मैं हूँ कुछ तो करेगी वो, ऐसे थोड़ी ना जाने देगी, कोई इतना जल्दी हार स्वीकार नहीं करता,
कुछ जिद्दी होता है ना तो मानता नहीं,
हट करते हैं जाते
अपनी
कमजोरियां, देहभान काम ही माया है और कुछ नहीं है। और एक उदाहरण दिया वहाँ पर, तीसरा एक तो बकरी और शेर, दूसरा वो सांस और हट, और तीसरा
गीता की,
हाँ गीता का 11वां अध्याय 33 उसमें वो बोला ना कि पहले से ही सब मरे पड़े हैं, तुम्हें तो बस निमित्त मात्र बनना है, ममे व्यक्ति निहितः निमित्तम भव सव्यसाचिनः। गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, ये जो है इनको मैंने पहले से मार लिया है, तुम खाली निमित्त बनो इनको मारने के। तो बाबा ने ये यहाँ पे यूज किया,
विराट रूप में दिखाया ना,
विराट रूप की बात करिए 33rd श्लोक 11वां अध्याय वहाँ पे बाबा ने आज इसको कहाँ यूज किया कि ये जो माया है तो पहले से मरी हुई है, तुमको निमित्त बनना है केवल विजयी बनने के। अर्जुन को कहा निमित्त मात्रम सव्यसाचिनः, सव्यसाचिन मतलब ये अर्जुन का एक नाम है जो अपने बाएं हाथ से भी यूज कर सकता है धनुर्विद, उसको सव्यसाचिन कहते हैं। तो जैसे अर्जुन को कहा गया तुम खाली निमित्त बनो, तो बाबा ने कहा यहाँ पे तुम खाली निमित्त बनो, माया तो पहले से ही
मरी।
फिर सबसे पहला पार्टियों से मुलाकात
विजयी
महामंत्र दिया है, मंत्र संसार में किस लिए दिया जाता है, मंत्र जाप करते तो दुख दूर होता है, दुख दुविधा पीड़ा दर्द, तो यहाँ पर भी मंत्र जाप करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे स्वप्न में भी तुमको दुख ना आए, स्वप्न में भी कोई दुख ना आए, स्वप्न में भी दुख की लहर ना आए, धन की हलचल, धन का नीचे ऊपर होना, कुछ नहीं, तुम कोई भी चीज तुमको दुखी ना कर सके। उदाहरण कौन सा दिया, तुम किसके संतान, वो भी बोला तुम सागर के संतान, नहाने का स्विमिंग,
स्विमिंग
नहाने वाले मजा लेते हो, डूबते तो ही ना है, वो क्या करते लहर आते तो उसको जंप करके क्रॉस करते। माया है प्रश्न पूछ रहे, स्विमिंग से नहीं हो
नहाना तो ठीक है तैरना,
नहाने से तो पता लगेगा लहर कैसे आते हैं तो,
अरे बहुत मजा आता है
सागर में नहाना अलग होता है तैरना अलग होता
है, मरना लगे
बाबा ने दोनों बातें बोली। तो लहर आती है तो बाबा ने कहा कि दुख की लहर अगर आए तो वो क्रॉस करके चली जाए, अंदर ना समाए, बस तुम्हारे स्वप्न में भी दुख का अनुभव।
हम लोग छोटे छोटे थे तो बाबा के साथ समुद्र में जाते थे नहाने, तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे, लहर आता था तो ऐसे सब एक साथ जंप कर लेते थे।
यही तो शब्द है बाबा के आज भी, लहर आती है तो जंप कर लेते हो, क्रॉस कर लेते हो, सागर के बच्चे कभी डूब नहीं सकते,
दुख की लहर नहीं,
तो दुख की लहर अंदर नहीं जाना चाहिए, दुख की लहरें तो आएगी परंतु वो क्रॉस करके चली जाए, अंदर ना जाए। सागर के बच्चे हो, सुख के सागर के बच्चे कभी दुखी नहीं हो सकते। तो ये था सारा पार्टियों से मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबसे पहला दुख के बारे में, दूसरा विजय के बारे में, तीसरा आकर्षण के बारे में, विजयी और आकर्षण के बारे में, चौथा
संतुष्ट
नहीं, चौथा बोर्ड किसी का चेहरा, फिर संतुष्ट था और फिर कर्म कैसे हो, ये सारा अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें कभी कर्म के बारे में कह रहा है, कभी वृत्ति कैसी हो संतुष्टता के बारे में कह रहा है, कभी अपने विजय के बारे में बता रहा है, समान के बारे में, कभी कह रहा है आकर्षण नहीं होना चाहिए तुमको, फरिश्ता अर्थात मंडे का वरदान, सर्व आकर्षणों से मुक्त, कौन कौन से आकर्षण बताए थे मंडे, फरिश्ता बताया था ना, वरदान था ना, ना तो देह का आकर्षण, ना
पुरानी दुनिया का, देह पुरानी, देह पुरानी दुनिया, पुरानी
पदार्थ का आकर्षण, ना तो व्यर्थ संग, व्यर्थ बोल, व्यर्थ समय, सब आकर्षण से परे जो है वो है फरिश्ता, कोई भी आकर्षण नहीं। चलो मुरली
मुरली तो बोला आवाज से परे रहो,
आवाज से परे रहो। पूछ रहे प्रश्न पूछ रहे बाबा, क्या क्या प्रश्न पूछ रहे बालाजी भाई? बाबा ने प्रश्न पूछे आते ही स्मृति दिलाई है।
जैसे आवाज में आने का, सुनने का, बोलने का,
आवाज में आना, आवाज से सुनना, आवाज को धारण करना, आवाज में सुख का अनुभव करना, आवाज में रमणीकता का अनुभव करना, आवाज में शांति का अनुभव करना, आवाज से प्राप्तियों का अनुभव करना, ये यहाँ हो गया। अभी वहाँ आवाज से परे, यहाँ शांत वहाँ अति शांत, यहाँ रमणीकता वहाँ अति रमणीकता, यहाँ सुख वहाँ अविनाशी सुख स्वरूप, अविनाशी सुख स्वरूप। तो यहाँ प्राप्तियाँ वहाँ सर्व प्राप्तियों का वही अनुभव वहाँ होता है आवाज से परे। आवाज से तो हो ही रहा है सबको, सुनना, आवाज धारण करना, आवाज में आना, तीन बातें, इससे तुमको सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। तो यही सर्व प्राप्तियों का अनुभव वहां होता है। यहाँ तुमको एंटरटेनमेंट है, रमणीकता है, वहां अति रमणीकता है। यहाँ सुख है, वहां अविनाशी सुख स्वरूप हो। यहाँ शांत हो, वहां अति शांत हो। कितनी सुंदर बातें है। एक सेकंड, रूहानी लश्कर हो, इशारा मिला और किया, मिलिट्री हो ना तुम, स्मृति का स्विच ऑन करो, स्मृति का स्विच ऑन किया तुरंत ऊपर, ऐसी तुमको रूहानी गिफ्ट, लिफ्ट, रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। पर ये जो लिफ्ट है एक सेकंड वाली होनी चाहिए, और इसकी ये लिफ्ट में चढ़ने की बार बार प्रैक्टिस चाहिए। लिफ्ट भी अच्छी चाहिए, उसमें जाने आने की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए।
अटक जाती,
लिफ्ट अटकती है, लिफ्ट कभी काम नहीं करती है, दूसरे तरफ चली जाती है। बटन दबाया था 6 नंबर का, चली गई 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कहां से कहां चली जाती है। ये लिफ्ट है, ये स्विच है, स्विच को ऑन करते ही ऊपर। तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है, जिसका जिससे प्यार है उसको उसके साथ रहना चाहिए। मैं रहता हूँ ऊपर, तुम नीचे क्यों रहते हो? मैं हूँ अव्यक्त, तुम व्यक्त में क्यों? मैं हूँ आवाज से परे, तुम आवाज में क्यों? तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है तो तुमको मेरे साथ रहना चाहिए।
हाँ, जिससे प्यार होता है उसके साथ रहते हैं ना,
साथ। ये अव्यक्त महावाक्य है
मूल बाबा, लेकिन बाबा को मालूम,
तुम इस संसार में ऐसे रहो जैसे कि यहाँ हो ही नहीं। साकार के महावाक्य है 69 में, बाबा कहते थे मैं इस तन में ऐसा रहता हूँ कि जैसे इस तन में हूँ ही नहीं। लोगों को लगा ये शिव बाबा कह रहा है,
लेकिन ब्रह्मा,
पर बाद में पता चला ये तो ब्रह्मा के अनुभव है। लोगों को पहले लगा ये शिव बाबा कह रहा है मैं इस तन में ऐसा रहता हूँ जैसे इसमें हूँ ही नहीं, पर वो बोलते ब्रह्मा के मैं इस तन में ऐसा रहता हूँ जैसे मैं इस तन में हूँ ही नहीं। वो अवस्था थी अंतिम स्टेज। फिर आगे बाबा ने क्या कहा कि तो आवाज की बातें कही, रूहानी लश्कर की बातें कही, स्मृति के स्विच ऑन करने की बातें कही,
पुण्य पाप की बात।
फिर बाबा ने कहा तुमको चेकिंग करने आएंगे। कौन है ये लोग जो चेकिंग करने आने वाले? नागेश भाई आ गए कि आने वाले हैं? शायद आ गए। किन की बातें कर रहा है बाबा? कोई तो कोई चेकिंग करने आने वाला है। कौन है ये लोग जो आ रहे हैं?
वो तो अभी चुके हुए हैं, पहले एक बार मनोहर दादी के।
तो बाबा ने कहा अनेक आत्माएं तुमको चेकिंग करने आएंगी। लास्ट संडे की मुरली में भी लास्ट लाइन थी, तुम्हारी वृत्ति स्वभाव चेक करने आत्माएं आएगी। मधुबन निवासियों से मुलाकात बाप दादा से, आत्माएं तुम्हारी चेकिंग क्यों चेकिंग करने आएगी? क्योंकि तुमने चैलेंज किया है विश्व को। क्या चैलेंज किया है? हम एक की याद में एक रस अवस्था में, एक की याद में एक रस अवस्था में हम रहते हैं। ये तुमने चैलेंज किया विश्व को, तो वो आत्मा आएंगी देखने के लिए। क्या देखने के लिए? कि ये स्मृति से, वाइब्रेशन से, स्मृति से, वाइब्रेशन से, वृत्ति से विश्व की क्या सेवा कर रहे हैं? समर्पित स्वरूप की स्मृति से ये लोग क्या सेवा करने हैं?
क्लास में था ना,
स्वरूप से तो उसको योग करना नहीं पड़ता है।
स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप अर्थात वो स्मृति निरंतर, वो सूरज भाई इसका उदाहरण देते हैं ना, बाबा बैठे हुए हैं और एक तो बाप दादा हिस्ट्री हॉल में, तो बाजू में वो कौन ब्रिजेंद्र दादी है, तो उसमें बाबा ने कल ही बताया तो, हाँ तो वो हमेशा बताते हैं ये उदाहरण, तो फिर कहता कि इसको अभी याद करने की जरूरत नहीं, ये स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप उसको स्वरूप बन चुका है, उसको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं।
कर क्या रहे थी
याद आई होंगी,
ऐसे करो जो कर्म मैं करूँगा नेक्स्ट, तो ये आत्माएं आने वाली है,
डायरेक्ट पीले थे तो बच्चे ही वैसे पीना शुरू कर रहे, इसलिए याद याद से पी।
अरे वो तो बाबा देखो अव्यक्त तो बाप दादा सामने बैठा है, स्वयं भगवान सामने बैठा है और ड्रिल करा रहा है, एक सेकंड में आत्मा समझ के परम धाम में चले जाए,
हालांकि वो सामने है,
वो सामने है और ड्रिल करा रहा है परम धाम जाने जहाँ वो रहता है, ये भी आश्चर्य नहीं, सोचा नहीं कभी इसके बारे में, भगवान सामने बैठा है और ड्रिल क्या करा रहा है, मुझे परम धाम में याद करो आत्मा समझ के,
तुरंत चला
जा सकता बोल दिया बस,
उसको तो एक ही जगह रह के जाने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह रह के अपने अनेक कर्तव्य कर सकता है। राम जब अयोध्या से वापस आया था, हर अयोध्यावासी की इच्छा थी कि मैं राम से पहले गले मिलूं, तो वो तो प्रभु धरि विविध शरीर, वो अनेक असंख्य शरीर धारण करता है और हर अयोध्यावासी को लगता है वो मेरे से मिल रहा है। तो जब भक्त ये अवतार या महापुरुष या साधु संत योगी तपस्या सिद्धियां ये कर सकते, तो क्या भगवान एक जगह रह के ऐसे कर्तव्य नहीं करा सकता, करा सकता है, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है।
गुरुवार को कितने संतरों में भोग लगता है, सबका भोजन खाके सबको अलग अलग
हर गोपी के साथ में कृष्ण है। तो महाराज पूछ रहे हैं कि आत्माएं आएंगी और चेकिंग करेंगी तुम्हारी, देखेंगी क्या देखेंगी, कि स्मृति से वृत्ति से दृष्टि से वाइब्रेशन से ये लोग विश्व की कहाँ तक सेवा करते हो, क्योंकि तुम अपने आप को क्या कहते हो, विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी, हम विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी आत्मा है, ये हमारा टाइटल है। तो ये कहाँ तक है चैलेंज और प्रैक्टिकल समान कहाँ तक है। फिर बाबा ने कुछ भविष्यवाणियां की, एक समय आएगा क्या कि जो साइंस है वो भी योग की शक्ति को
प्रत्यक्ष
करेगी, कहा है साइलेंस की शक्ति का नाम बाला करेगा, और दूसरा योग की जो शक्ति है, योग से क्या प्राप्ति है, योग की क्या कहाँ तक गति, गति विधि योग की शक्ति की, और योग की शक्ति से क्या क्या प्राप्ति है, ये सारा होगा साइंस के द्वारा।
तो फिर आगे मिनट लगाएंगे आके बाबा ने बोला व्यक्तिगत तो हो गया लेकिन फिर सारा होगा,
व्यक्तिगत की बात अलग है,
वो भी देखेंगे फैलती है योग की शक्ति क्या तक जाती है, योग की शक्ति कौन सी शक्ति कहाँ है, कहाँ तक फैलती, उसकी गति और विधि क्या क्या है, ऐसा है वो पूरा अभी आया। तो इस तरह का बाबा ने बोला, ये भी साइंस वाले आएंगे चेक करने,
वो कोई महात्मा विदेश का अगर कुछ आया था और अमित बाबा के सामने भी उसमें वो क्या करता था, वो श्रीनाथ वाले हिंदू महापुरुष,
वो एक मीडिया वालों की कोई कॉन्फ्रेंस थी, बताया था कि वो साथ में ही आ रहे थे, तो जैसे ही अबू रोड आया तो उसके उसमें कुछ तो वो मीटर था, तो आध्यात्मिक जो भी स्थान है वहाँ वहाँ गया था, यहाँ जब आया वो मतलब जब पांडव वन में आया तो उसका जो है ना वो जो सही थी ना उसमें टक से लगी और टूट के गिर गई,
बोला इसके पहले भी एक बार बहुत पहले यहाँ पर कोई लोग आए थे साइंटिस्ट वो मीटर लेके, तो ये जो एरिया है शांति स्तंभ से लेके तो बाबा की कुटिया तक, उन्होंने पाया कि ये जो एरिया का वाइब्रेशन है संसार में सबसे पावरफुल वाइब्रेशन, रशिया की कुछ साइंटिस्ट आए थे बहुत पहले, बहुत पहले
मशीन में उनकी निष्क्रिय हो जाएगी जब
तो ऐसी आत्माएं आएंगी तुमका, तुम्हारी चेकिंग करेगी, तो साइंस की शक्ति से साइलेंस की शक्ति का नाम बाला होगा, और फिर योग की विधि क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद में आगे क्या पूछा बाबा ने, हाँ नहीं वहाँ पर तो आगे है। फिर बाबा ने पाप और पुण्य की परिभाषा यहाँ पे दी कि तुम्हारा कर्तव्य इतना ऊंचा है तो निरंतर इसकी स्मृति में रहते हो,
कमजोरी
या अपनी ही कमजोरी या अपनी ही शर्म आती है तुमको, बाबा ने पूछा ना वहाँ पर कि अपनी क्वेश्चन है, बाबा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे वहाँ पर कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है कि अपने ही पुरुषार्थ की हलचल में हो लगे हो, अलबेलेपन के कारण अपने ही पुरुषार्थ में हो या हलचल में हो या कमजोरी में हो, तो बाबा ने वहाँ पूछा शर्म नहीं आती। और फिर इसी को बाबा ने पाप और पुण्य के साथ जोड़ा कि जो ऐसी आत्मा है जिनके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो क्या कर रहे हैं, आत्माओं को वंचित रख रही है, तो ये तो पाप और पुण्य का जैसे खाता है। हाँ बाबा ने ये भी प्रश्न पूछा कि बाप का नाम आगे है, ये नाम बाप का और नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं करता, ऐसा कोई कर्म तो नहीं करते, अभी तुम पुण्य आत्मा बनने वाले हो पर ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे हो कि जो पाप का कर्म जो यही चुकतु करने में लगे हो, तुमको तो दूसरों को भी पुण्य आत्मा बनाना,
पाप कर रहे हो चुकतु कब करो,
चुकतु कब करो, ये प्रश्न पूछे बाबा ने अलग 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 अलग। फिर आगे पाप और पुण्य, फिर वो तीन, हाँ सबसे पहले संकल्पों के संकल्प बोल और कर्म, तो बाबा ने कहा संकल्प के भी पाप बनता है, संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल। अभी चिंतन का हमारा ये विषय है कि संकल्पों के पाप कौन कौन से, सबसे मुख्य पाप तो है विकार,
विकार की
दैहिक दृष्टि जाना, उसको तो बाबा ने कहा वो वृत्ति के लिए बोला, एक तो संकल्प और वृत्ति, संकल्प में अगर विकार है तो पाप है, संकल्प में अगर किसी अन्य आत्मा के प्रति विकार की वृत्ति है तो वो महापाप बोला आज तक। तो संकल्प वृत्ति और संकल्प में व्यर्थ एकदम सूक्ष्म है, थोड़ा उसके ऊपर आ जाए, अशुभ भावना व्यर्थ
भावना के बजाय
अन्य कोई भी भावना है, शुभ भावना के बजाय अन्य कोई भी भावना है तो ये भी पाप के खाते में चला जाता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, संकल्पों के पाप, हमने बोल ही दिया है फिर भी
संकल्पों के पाप,
संकल्प के पाप किसी से ईर्ष्या करना, किसी को गिराना, किसी को नीचा दिखाना, षड्यंत्र करना, किसी के विरोध,
पहले तो जो भी आता है किसी से बदला या ईर्ष्या, संकल्प में आता है वो भी,
पहले तो हम
संकल्प में,
सारी सृष्टि संकल्प की है,
बीज ही संकल्प,
बीज संकल्प का, जिसने मेरे साथ ये किया
देखते हो,
अभी मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, मुझे क्या करना, मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं ना बदले पे,
और मैं देख लूंगा इससे आते मैं माफी मांग
लूंगा। मैं इतने तो ये तो
प्लस हो गया,
प्लस हो गया, ये तो वो उसके जैसा, एक दो साधु होते हैं बहुत बाहर गांव के बाहर रहने वाले और बहुत ही शुद्ध प्रवृत्ति के होते हैं, दोनों ही सत्व प्रधान होते हैं, उनके पास लोग आते हैं और बहुत तो अपनी समस्याओं का सॉल्व निदान लेके जाते हैं, तो वो लोग दोनों साधु एक बार सोचते हैं कि हम संसार की इतनी समस्याओं का ये करते, संसार में कितने झगड़े हैं, चलो हम भी एक बार लड़के देखते हैं एक दूसरे से। तो बोलते हैं नहीं नहीं, हम हमारा स्वभाव ही नहीं है लड़ना, तो बोलते चलो ट्राई तो करते हैं, चलो एक दूसरे से हम लड़ते हैं आज, देखते हैं क्या होता है। तो वो पहला साधु चालू करता है, ये देखो ये जो फल की टोकरी है ना ये मेरी है, वो बोलते तेरी कैसी, ये तो मेरी है, दोनों देखते क्या होता है लड़ने के बाद। तो बोलता है नहीं नहीं, ये तो जो टोकरी है ना ये तो फल मैं इसको लेके आया हूँ वन से, तुम थोड़ी लेके आए। तो दूसरा तुरंत बोलते है हाँ तुम्हारी मेहनत इसमें ज्यादा है तुम ही दे लो। तो दोनों हंसने लगते, बोले हमें ये संभव ही नहीं है। वो प्रयत्न करते है कि लड़के देखे, पर वो भाव ही ऐसा है, संस्कार ही ऐसा है कि तुरंत देख लेता है वो, जैसे बोलता है कि ये फल मैंने तोड़ के लाए है, तो बोलते मुझे भूख भी नहीं है और फल तुमने तोड़ के लाया तो तुम ही रख लो। और दोनों झगड़ा खत्म। चिंता नहीं है कि संसार में इतने लोग झगड़ते हैं क्यों, क्योंकि ये श्रेष्ठ भावनाएं नहीं है। इसके लिए बाबा ने आज भाव और भावना इसको परिवर्तन करो, शुभ भाव और शुभ भावना ही पुण्य आत्मा की निशानी है,
भाव और भावना,
बस ये दो शब्द
बताया ना, भाव आपका आत्मिक हो, भावना
शुभ हो। तो आगे क्या कहा बाबा ने कि
आते हम, हो गया संकल्प,
हाँ, ये तो हो गया संकल्प और संकल्पों के पाप, विठल में संकल्पों से क्या पाप, ईर्ष्या द्वेष सारे विकार,
ये तो फिर हो गया, फिर पास्ट के अगर हमें कुछ अपनी पुराने याद आ जाते हैं,
देखो कोई युगल है जो तो पहले विकारी थे फिर ज्ञान में आ गए, फिर 10-15 साल अच्छे से ज्ञान में चले, योगी बन गए, और अचानक 15 साल पहले का विकार का संकल्प वापस आ गया। स्मृति के ऊपर है सब कुछ, याद आ गई विकार की, और वापस देहभान आ गया, वापस वासनाएं जागृत हो गई और उसके वशीभूत हो गए। भले 15 साल से एकदम संपूर्ण योगी है, पवित्र है, ज्ञानी है, पर अचानक वो याद आती है ना पुरानी स्मृति। किसकी? संस्कारों की, कर्म किया हुआ है उसके संस्कार स्मृति पटल पर है, तो वो स्मृति आ गई और उसके आधार से कर्म हो गया, और कर्म होने के बाद तुरंत उससे वैराग आ गया और पता चला ये पाप हो गया। अभी ये जो कर्म बना उसका भी तो बोलता है प्रत्यक्ष फल, बाबा ने बोला संकल्प के है, संकल्प और कर्म तक भी चला गया, पाप हो गया। तो इसके लिए
पुरानी बात है,
बाबा ने क्या कहा उस दिन, अलबेलेपन के स्क्रू ड्राइवर को टाइट करने को बोला
है।
कौन सा स्क्रू ड्राइवर है संजय भाई?
समाज
के स्क्रू ड्राइवर से अटेंशन अपना, अलबेलेपन के स्क्रू को, लूज स्क्रू को टाइट करो और सदा अलर्ट रहो, सदा अलर्ट जागरूकता।
बाबा के सामने
तो ऐसी जागरूकता चाहिए, एक पल की भी असावधानी पाप करा सकते फिर तुरंत पता भी चल गया कि पाप हो गया, फिर आप क्या कर सकते हैं? कर्म तो घट गया, जो घटित हो गई है घटना उसको वापस बदला नहीं जा सकता, उसका फिर बोझ पुण्य उसको वापस डबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक का 100 गुना है, आज भी बोला ना बाबा ने,
यहाँ
पुण्य एक का 100 गुना है तो पाप भी एक का 100 गुना है। अज्ञान में एक का 1 गुना, इधर प्राप्तियां अनगिनत है, तो एक का 100 गुना।
फिर ये भी बोला ना बाबा ने, ब्रह्मा कुमार बन गए।
फिर बाबा ने ये भी कहा कि किसी किसी को नहीं, एक तो इसके पहले कहा बाप के बन गए तो नशा रहता है, पर नशा और ईर्ष्या ये मिक्स
नहीं होता,
इसको भी मिक्स नहीं होता। फिर ये भी बोला प्राप्तियां अनगिनत, और आप जो बोल रहे ना ब्रह्मा कुमार तो बन गए, पाप तो भस्म हो गए, अब तो संपूर्ण बन ही गए, ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं सोचो। क्या रखो? मर्यादाओं को सामने रखो, नियमों को सामने रखो,
नियम को ध्यान में रखो, मर्यादाओं को सामने रखो, और तीसरी बात
अलबेले मत बनो,
पाप पुण्य का
बुद्धि में रखो
और पुण्य का वरदान लो
निरंतर। हाँ, पुण्य आत्मा भव का वरदान लो बाप से रोज, ये एक भी अच्छा वरदान है पुण्य आत्मा भव, कि हम जो कुछ आज सारे दिन भर कर्म करेंगे पाप ना हो जाए, किसी को दुख ना दे, ऐसे कर्म ना करे। और क्या बोला फिर बाबा ने? भाव और भावना के बारे में बोला ना, शुभ भावना, शुभ भाव और शुभ भावना। हाँ, फिर बोल के आगे चले गए, बोल से भी व्यर्थ बोल भी क्या है, पाप के खाते में। संबंध संपर्क में भी बोला, अगर शुभ भावना के अलावा कोई भी भावना है तो भी पाप के खाते में। अभी कितना सूक्ष्म है ये। फिर संसार के लोग करते, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, और बाप कहते हैं व्यर्थ ना सोचो, न सुनो, न करो। अगर कोई सुनाए तो उसको भी शुभ भावना से सुनो। लास्ट संडे की मुरली, पांडव के भाइयों से मुलाकात, क्या था? बहुत ही बढ़िया था। लास्ट संडे की मुरली, बड़े भाइयों से मुलाकात, कोई भी विशेषताओं का वर्णन करो। अगर कोई ग्लानी करने तुम्हारे पास कोई आए तो उसको टेका नहीं दो। अगर कोई तुमको आगे बताए ऐसा ऐसा करते हैं तो उसे उसके विशेषता की बात सुनाकर उसके भाव को परिवर्तन कर दो।
ये कला होनी चाहिए,
ये कला होनी चाहिए। कोई पूछे तुमको ये कैसा है तो
बहुत अच्छा,
दिल से निकले बहुत अच्छा, ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा काम है। क्योंकि मनुष्य आत्मा के अंदर इतना जहर भरा है कि निकलता ही नहीं दूसरे के लिए अच्छी भावना। जो भी हमारा ज्ञान है वो इतना अंदर है, उसमें एक जहर का प्याला है, उसमें एक बूंद क्या डाल दो, दूध, कुछ होगा क्या? हम सोचते हैं हमने बहुत ज्ञान का चिंतन कर लिया, अरे जन्म जन्म जहर भर के रखा है, इतना जहर है अंदर कि वही निकलता है।
संसारी
एक ग्लास जहर में एक बूंद दूध की, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत उसमें समाना पड़ेगा, एक एक निकालना पड़ेगा अंदर से। कोई भी पूछे ये कैसा है तो दिल से निकले
बहुत
अच्छा। आज भी बोला ना ड्रामा, अरे हम ड्रामा की एक पॉइंट भूल गए, कोई पूछे ड्रामा
बाबा
आगे हैं, आगे
ये
आगे,
तो
आगे यहीं पे
इसी में आगे,
तो आगे आएंगे उसके। क्योंकि ड्रामा ही वाहवा है, तो जो कुछ हो रहा है सब वाहवा है, मैं भी वाहवा, वाह बाबा वाह ड्रामा, तो विश्व भी वाहवा करेगा,
वाह मेरा पार्ट,
आया नहीं करूँगा,
वाह 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 मेरा पार्ट।
फिर आगे क्या बोला, और ये हो गया संकल्प बोल और कर्म, कर्म में संबंध संपर्क भी बाबा ने ऐड कर दिया। फिर वो ब्रह्म कुमार का हो गया, फिर बोला स्वयं का परिवर्तन ही दूसरों का परिवर्तन है, सबसे पावरफुल महावाक्य है मुरली, खुद का परिवर्तन ही दूसरों का परिवर्तन है। दूसरों को परिवर्तन करने में मत लग जाओ, खुद को परिवर्तन कर दो तो दूसरों को परिवर्तन, इसी को बाबा ने कहा मरना है, जैसे ये यही मरना है, पर ये जैसे महाबली बनना है, ये खुशी खुशी से मरो, ये नाम है मरना खाली, इसी में ये खाली नाम है मरना, पर ये तो जीना है। फिर आगे भी बोला एक बाप दूसरा नो को, ये भी मरना है पर ये खाली नाम का मरना है, वह है तो सहज बनना, मुश्किल नहीं अनुभव होना चाहिए, फिर परिवर्तन, फिर वही वो वाह वाह वाली पॉइंट है, ड्रामा
ड्रामा
ड्रामा, ये मुरली बहुत
नसर खुल जाते हैं,
चिंतन चाहिए समर्थी का समय, और भी कुछ एक दो बार पास छूट गया, व्यर्थ को खत्म करो और व्यर्थ को छोड़ो और संपन्न स्वरूप बनो, अब व्यर्थ को छोड़ो और संपन्न स्वरूप बनो, ये बोलो। तो ये था बाबा की परिभाषा पाप पुण्य, हमने जो शुरुआत में डिस्कस किया वो संसार क्या कहता है, अच्छे कर्म ये वो, और बाबा क्या कह रहा है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे हम आत्माओं को वंचित रख रहे, किस वजह से, पुरुषार्थ की हलचल के वजह से या फिर अपनी कमजोरियों के वजह से, ये वंचित रखना पाप है,
अपने
अपने भी लगे हुए
मतलब ये समझ के कोई खुश नहीं हो सकता कि मैं तो बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ,
पुरुषार्थ कर रहा हूँ,
पुरुषार्थ अच्छा कर रहा हूँ, पुरुषार्थ में भी हलचल, उसमें भी कमी कमजोरियाँ, और तुम्हारा काम है विश्व परिवर्तन, तुम्हारा काम है वो, उससे आत्माओं को तुम वंचित रख रहे हो, तो ये है पाप,
मतलब पुरुषार्थ भी हमारा ढीला हुआ तो भी काम से गए
तुम्हारा अगर एक अमृत वेला भी मिस होता है तो कितनी आत्माओं को वंचित रखते हो अपने सकाश से, आत्माओं का नुकसान है उधर, हमारा इधर मिस होना, अर्थात तुम अगर रात में कुछ करने लग गए 12-1 बजे तक और उधर अमृत वेला तुम्हारा जा रहा है, व्यर्थ की बातें सुनना देखना करना पढ़ना, मोबाइल इंटरनेट टीवी ये सब में लगे हैं आत्माएं, ये वो करने में, तो अगर उधर लेट हो रहा है, मिस नहीं लेट भी अगर हो रहा है
भी
तो भी आत्माओं को तुम अपनी सकाश से वंचित कर रहे हो, बाबा की आज की मुरली की परिभाषा से ये भी पाप, ये कितने सूक्ष्म पाप है,
सूक्ष्म पाप के लिए भी बोला है ना कि यहाँ जितना लेट आते हो तो भविष्य की बात,
एक घंटा यहाँ लेट तो वहाँ एक जन्म लेट बोला बाबा ने इस मुरली
में, समय का महत्व बताया,
समय का
लेट कनेक्शन कनेक्शन,
क्योंकि देखो हम आत्मा को संसार को सकाश दे या ना दे, जैसे आत्मा अशरीर होती है उससे ऑटोमेटिक सकाश निकलना चालू होती है, संसार को हम इमर्ज करे और दे ये करे ना करे, जैसे ही आत्मा अपने स्वरूप में टिकती है अशरीरी होती है ऑटोमेटिक सकाश प्रभावित होना चालू हो जाता है, जागृत अशरीरीपन मूर्छित अशरीरीपन नहीं,
ऐसे ही जैसे रेडियो से सेल निकाल के बाहर रखते क्या होगा,
हाँ सुख देते हो विश्व को, खुशी का दान देते हो,
शांति
का दान देते हो, ये एक मुरली का प्रश्न था साकार मुरली में,
और
यही वाली बात
एक स्लोगन भी था ना, पवित्रता और शांति की लाइट फैलाने में लाइट हाउस,
लाइट हाउस आज का वर्धन ज्ञान और योग पर, स्वप्न में भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए, और मुरली में कहा स्वप्न में भी दुख नहीं आना चाहिए, धन की हलचल ये सब अंदर नहीं जानी चाहिए, यहाँ कहा कि स्वप्न में भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए, माया तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, शक्तिहीन है, ज्ञान योग का बल सबसे बड़ा बल है, जैसे वैज्ञानिक वो अंधकार को रोशनी से भगाते हैं, उदाहरण दिए, और एक हफ्ते में कुछ तो पावरफुल
याद
से लाइट आती है,
जितना बाप तुमको उच्च समझते
उतना तुम अपने आप को नहीं समझते, जितना बाप तुमको ऊंची नजर से देखते तुम अपने आप को उतनी ऊंची नजर से नहीं देखते,
सब देखेंगे,
अरे तुम अपनी सबसे बड़े से बड़े देवता बनने वाले फिर भी अपने आप को नहीं देखते,
6 घंटे
योग लाने से ये नहीं समझ, कुछ नहीं बनना, बनेंगे नहीं, बड़ी मेहनत करेंगे, समझ लेना लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे,
लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे,
और योग में भी ऐसा नहीं कि याद कर लिया मतलब काम हो गया, पढ़ाई भी जरूरी है,
पूरी मुझे
पढ़ाई से
भी इसका मालिक बन गया
पढ़ाई
कोई बच्चे कहते हैं हमारा शिवाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है तो अम्मा से कनेक्शन नहीं है और बाप को भी ये ब्राह्मणों के बोल नहीं हो सकते और बोलो कारण क्या बताएं ये ब्राह्मण तुम किसकी संतान हो तुम ब्रह्मा की भी संतान हो ब्राह्मण और शुद्ध तुम बिना ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते किसकी होगी
होती है
लक्ष्मी बाकी सबकी होती है बचपन में निंदा ग्लानी होती है बड़े पन में नहीं होती ऐसा आश्चर्य
ये बड़े सूक्ष्म पॉइंट है वो जो श्री कृष्ण अलग राजाई का राधे अलग राजाई
तो बोला
वो समय के हिसाब से और वो कैसे राजाई बनेगी और किस प्रकार की उत्पीन होगी
हम कौन से राज में जाएंगे और परीक्षण की
तो हंस क्या करता है नीरशीर को अलग करता है दो गुण बताया उसने दो विशेषता है हंस नहीं होली हंस ये बाबा का शब्द है संसार में नहीं है ये शब्द ये इंग्लिश होली और हंस से बना हुआ शब्द है संसार हंस परम हंस को कहता है ये बाबा की हिंदी है भाषा एंग्लो हिंदी तो इंग्लिश तो एक है रत्नों को चुगना और दूसरा है दूध और पानी को अलग करना तो दूध है समर्थ पानी है व्यर्थ इसको अलग करना ये है होली हंस वरदान एक वरदान है फरिश्ते पर एक वरदान है विशेष आत्मा पर एक वरदान है होली हंस पर एक वरदान है याद है छत्र छाया ये छत्र छाया में रहोगे तो उस पाया की छाया से बचे रहोगे एक पॉइंट हमारा भूल गया सेफ का कोई कोई बाबा बच्चे ये भी करते हैं कि सब करते हैं मैंने किया तो क्या हुआ पर वो करे ना करे मैं सेफ हूँ ये है विश्व कल्याणकारी बनना तो ये दूसरे का दूसरों में ये कमजोरी है ठीक है परंतु मुझे सेफ रहना ये है विश्व कल्याण का
नहीं
तो जो याद में है बात की वो सेफ है छत्र छाया में है जो माया की छाया से वो सेफ है फिर एक था वर्षे के अधिकारी जो है यहाँ पर वही विश्व राज्य अधिकारी वही स्वराज्य अधिकारी होंगे जो पक्के योगी है
योग से शीतल
कर्मेंद्र या ठंडी हो जाए बाबा ने जैसे वो साधु संन्यासी दवाइयों से कर्मेंद्रियों को ठंडी कर देते हैं
कौन सी दवाई होती
है उनके पास जड़ी बूटियां कुछ तो तुम्हारी कर्मेंद्रियों को तुम जैसे कर्मातीत अवस्था को पाते जाओगे कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी ठंडी हो जाएगी जो पक्के योगी हो जाएंगे वो उनकी कर्मेंद्रिया ठंडी हो जाएगी जो संपूर्ण ये है साहूकार है वो कभी सरेंडर नहीं हो सकते वो कभी
क्या
उनको याद आते रहता है वो उनके प्राण उसके पिछाड़ी में होते हैं धन दौलत बच्चे मोटर गाड़ी
के गरीब बच्चे
कौन नहीं लेते
गरीब हो जाएगा और गरीब साहूकार
बाप आया है गरीबों को साहूकार बनाने और साहूकारों को गरीब
स्कॉलरशिप कौन ले
स्कॉलरशिप प्राइज और लॉटरी तीन शब्द थे मुरली में तो बाप आए हैं स्कॉलरशिप देने बड़ी प्राइज बड़ी स्कॉलरशिप बड़ी लॉटरी देने
लॉटरी
स्कॉलरशिप कौन ले सकते हैं
योग बल जमा
कर योग बल से और
जिन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा एक बाप के सिवा
कुछ भी याद ना रहे कुछ भी पिछाड़ी में याद ना रहे सब कुछ सहा करते
पिछाड़ी में कुछ नहीं याद आए ये बड़ी बात
लास्ट में अंतकाल में कुछ नहीं अंतकाल में पर वही याद आता है जिसने सारे जन्म पर जो जीवन भर जो स्मरण किया है वही आता है
योग भी मेहनत करेंगे
क्या क्या
बाल बच्चे
तो याद आ जाएंगे
पूरा
सरेंडर और
जो योग में रहने की मेहनत करेंगे उन्हें माया जरा भी तंग नहीं करेगी
हाँ जो योग में रहेंगे वो माया से तंग नहीं करेगी और
सफलता मुहूर्त वो जो हर सेकंड
सर्व खजानों में
सफल करते हैं सफल करने वाले सफलता हाँ रूहानी सोशल वर्कर शांति के वाइब्रेशन
शांति के वाइब्रेशन सर्व आत्माओं की पालना करने वाले सोशल वर्कर
विज्ञान तो नहीं मानता उस बात को। चलो और बोलो अनिल भाई,
पोजीशन
हाँ अनेस कौन है और फूल कौन है?
यूनिवर्स की
सेवा
जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, दूसरों को आप समान बनाया, वो बाप को सबूत दे कि बाबा इन्होंने हमारा जीवन बनाया, फिर दूसरे सेंटर पे गए, ऐसी एक एक टीचर बने, एक एक 10 से 20 सेंटर सुनाए, ऐसे जो है उनको बाबा कहते हैं अनेस्ट, ऐसे जो कहते हैं उनको कहते हैं बाबा फूल। दो शब्द है फूल और अनेस्ट। बाबा की नजर फूलों की तरफ जाती है तो परिभाषा दी थी बाबा।
फिर भी बाप जो है ना समझानी देते रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, राजधानी स्थापन
बाबा को कोई किसी बात
चिंता नहीं, चिंता नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, दर्द नहीं, वेदना नहीं, कुछ देखकर ड्रामा के पूरे पूरे सीन, क्योंकि जानते हैं क्या राजधानी स्थापन होगी, हर एक का पार्ट
बहुत फेल
हो गई, वही साल रहकर भी चला गया फिर भी उसको दुख नहीं। जिन बच्चों को बाबा ने सामने बैठ कर 10-10 मिनट मुलाकात की, पर्सनल बातें की, टोलिया दी, वो आज है नहीं,
बाप
तो फिर भी बाप क्या बाप जब उनको सुना रहा था बैठ के तब उसको पता नहीं था ये जाने वाला है, फिर भी उसको टाइम दिया, 10-10 मिनट बात की, टोली खिलाई, वरदान दिया।
लेना ही है ना भगवान,
एक जगह ये भी बोला ना जो बाप के लिए संदेश लेकर आते थे, बाप दादा के लिए, बाप के लिए वो भी नहीं है, बाप के लिए भी जो संदेश लेकर आते थे वो भी नहीं।
बाप अनायास इस तन में आते हैं, मैं कोई
बता
ढिंडोरा थोड़ी पीटता हूँ कि मैं आ रहा हूँ।
सावधान हो जाओ,
सावधान हो जाओ। और चपटी में सुनाता हूँ एक सेकेंड
से।
और
सुख सुख देते हैं, रास्ता बताते हैं, देते नहीं है।
हाँ, देते नहीं,
वो तो पुराने में चले गए। अरे चिमन भाई बोलो,
अनिल भाई जी है ना?
हाँ अनिल भाई, चिमन भाई, विठल भाई, अभी इनके भाई बोलो कुछ तो बोलो। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान,
क्या मतलब बैठे
निकाली निकाली
दो भी देना है। संजय भाई, संजय भाई एक मिनट बैठ लो भाई,
याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना,
याद के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान
देना,
याद से आत्मा
पढ़ाई
ईश्वर की बात,
याद से आत्मा पावन बने और ज्ञान से चमकीली, ऐसे एक चमकीली लाइट, याद से आत्मा में लाइट आएगी,
लाइट आएगी,
चमक बढ़ती है, क्या ऐसा कुछ
ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती
है, चमकीली बन जाती है, ऐसा है।
एक एक रत्न लाख,
बाबा का एक एक रत्न पढ़ाई पढ़ाई
वो इसलिए कि पढ़ाई पढ़ेंगे तो याद ठीक होगी।
सारे का आधार ज्ञान है, बाबा ने कहा ना बुद्धि में तुम्हारे ज्ञान टपकता रहे, निरंतर
मनन चलता रहे,
वरदान में था निरंतर मनन चलता रहे। सबसे पहला ज्ञानी है, ज्ञान निरंतर बुद्धि में हो, केवल आज की मुरली जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया कहा उससे कुछ होता है, उसके एक एक शब्द के, अभी एक होता है पहले खाली मुरली पढ़ना, फिर होना एक एक वाक्य, अभी एक एक शब्द की गहराई में जाना है, इतना गहरा हमारा चिंतन हो, एक ही शब्द पकड़ लिया पुण्य, उसको लिखो, अभी पुण्य के ऊपर एक ही शब्द ले लिया पुण्य और पाप, उसके ऊपर लिखो, एक ही शब्द जो मुरली में आता है ये क्यों कहा, किस भाव से कहा गया, उसके ऊपर चिंतन। केवल पढ़ना तो अभी तक कर ही रहे ना, सभी पढ़ रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, सुन रहे, सुना रहे,
डूबने रहे,
अभी उसमें डूब कहा रहे हैं, डूबने में तो उसमें समा जाना, वो और वो जैसे एक हो जाए, जैसे कि उसका अस्तित्व उसमें इतना खो जाना, वो डूब जाना है उसमें। अभी वो विवेकानंद के उसके गुरु पूछते हैं कि एक कप है ग्लास, उसमें अमृत भरा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? मक्खी की तरह ऐसे बाजू में बैठूंगे उसके और थोड़ा थोड़ा चूसोगे या उसमें डूबोगे? तो वो बोलते मैं बाजू में बैठूंगा और थोड़ा थोड़ा लूंगा। वो बोलते अरे मैंने तुमको इसके लिए थोड़ी ट्रेन किया, तुमको तो उसमें डूबना है, पूरा पूरा उसमें डूब जाना, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देना है। जैसे एक रेती की गुड़िया, उसको लगा कि मैं देखूं सागर कितना गहरा है, निकली रेती की गुड़िया सागर की गहराई देखने, और जैसे गहराई जाती गई वो खुद ही उसमें समा गई। ये है उसका बाप समान बन गई जैसे, वो और वो अलग नहीं रहे, फिर वो भी और वो भी एक हो गए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम्हें भी ज्ञान का सागर बनना है। बाबा ने कहा तुम एक एक टीचर बनना है, एक एक को टीचर बनना है।
जैसे जिलेबी में चाशनी समाई रहती है, तुम बाप भी समाई रहे,
बस समा जाए। वो जो है ना, आप वो कंचे की तरह नहीं रहो, कंचे को पानी में रखो रात भर तो उसमें जाता है वो नहीं। उसमें एक तो एक वो अलग उदाहरण है, पर एक है कि उसमें समा जाना। ये ज्ञान उसके विचार इधर है, हमारे विचार यहाँ है। वो स्पीकर यहाँ बैठा है, हम ऑडियंस यहाँ बैठी है, वो यहाँ बैठ के मुरली चलाता है, उसकी जो स्टेज है वो यहाँ है, हम यहाँ है। वो देखता है मैं बाप आए हैं, मस्तक पे देख रहे हैं, होठों पे देख रहे हैं, गालों पे वो देख रहे हैं, हाथों में वो देख रहे हैं, पैरों पे वो देख रहे हैं, दिल में वो देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं यहाँ से, हम कुछ और ही देख रहे हैं यहाँ बैठ के। हम देख रहे हैं देखा ये क्या कर रहा है, ये मोबाइल पे लगा है भगवान आया है, ये लिखने में लगे हैं भगवान, ये देखो टोली खा रहा है, बाबा ने भोग भी नहीं खाया ये भोग खा रहा है। और बाबा देखता है तुम्हारे मस्तक पे बाप दादा तीन रेखाए देख रहे, तुम्हारे हाथों में भंडार देख रहे ज्ञान, तुम्हारे कदम में पदम देख रहे हैं, तुम्हारे होठों में मुस्कान देख रहे, हम कुछ और देखते हैं। वो स्पीकर इधर है, हम यहाँ है।
हम ये ठग तो नहीं रहा, हम तो नहीं खा रहे बाबू को मस्तक में कैसे
ठग हम अपने आप को रहे हैं ज्ञानी कहकर। हाँ, कोई कोई सन्यासी भी होते हैं, कहते एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। अरे सारे विश्व में कोई नाम निशान नहीं बचने वाला है और तुम कुल की निशानी की बात कर रहे हो बाबा कहते। तो ऐसे सन्यासी ठग है, पर यहाँ हमारी बात चल रही, हम अपने आप को तो नहीं ठग रहे, अपने आप को हम ज्ञानी कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं,
अपने आप को धोखा मत दो,
अपने आप को धोखा नहीं, धोखा तो नहीं दे रहे। हम कहते हैं हम बड़े ज्ञानी है, बड़े योगी है, बड़े तपस्वी है, पर क्या वो जो वो कह रहा है वो मैं बनाऊं, या ऐसे ही बताने के लिए लोगों को बस योगी बनो ज्ञानी बनो, ये कपड़े वेश वो सब बदल दिया, पर खुशबू भी तो चाहिए। उस दिन कहा था ना, रंग रूप तो बदल गया बाप को आने के बाद, पर खुशबू
किसी में
खुशबू अभी तक निकल रही है क्या? बदबू ही बदबू है, दुर्गंध है, सड़ांध है, तो वो भी निकल रहा है पूरा बाहर।
और एक ये भी था कि जैसे बाप प्रेम का सागर है।
हाँ, तुम्हें प्रेम से काम लेना है। बाबा ने चोर का उदाहरण दिया, अगर चोर को भी अगर प्रेम से समझाओ
सच बोल देगा,
वो सच बोल देगा। भूत भूत जो है ना, अगर कोई तुम्हारे सामने क्रोध करे तो भूत कुछ प्रेम से रिस्पॉन्ड करो। बाबा जो एक एक काम दे रहा है वो बहुत बड़े बड़े काम है। शुभ भाव भावना, एक ही शब्द केवल शुभ भावना। मैंने अनुभव ये है कि हमारे अंदर शुभ भावना बहुत कम है, इतनी शुभ भावना अभी तक नहीं है। वो इन्होंने उदाहरण दिया था, वो क्या नाम है, गोपाल भाई इधर वाले हॉस्पिटल में आए थे, उनका कुछ बीच में प्रोग्राम था ना, समर्पित भाई को समर्पण जो हुआ था, उन्होंने गुलजार दादी के साथ का एक अनुभव बताया था कि गुलजार दादी को उन्होंने एक बार बताया कि अभी एक पांडवन का एक भाई आने वाला है, उसमें ये बहुत सारी चीजें है, खराबी है, तो उसको जरूर बताना आप सुधारने के लिए। तो पर उन्होंने कहा मुझे पता है आप उसको नहीं बताएंगे, तो मैं ऐसे ऐसे इशारा करूंगा तब आप बताना उसको। तो जैसे आता है ना, तो उसको ऐसे बताना आप कि भाई तुम ये ठीक नहीं है तुम्हारा, तुम इसको ठीक करो। तो वो आया भाई बैठा, फिर उन्होंने इशारा किया, दादी दादी ऐसे पीछे थे, तो दादी ने देखा कुछ नहीं, पहली बार दूसरी बार तीसरी बार कम से कम 3 बार इशारा किया कि अभी बोलो उसको, तो बोलो उसको बताओ कि ये सुधरे। तो फिर दादी बात किया उसके साथ 15-20 मिनट, टोली दे और उसको रवाना कर दी, बोला ही नहीं आखिर तक,
नहीं बताया।
उस दिन थोड़ी बहन ने बताया था दूसरे की कमियों को देखना वो स्वयं की कमी हो जाती है।
एक दूसरा भी उदाहरण उन्होंने दिया था, वो मानसरोवर में एक कोई भाई था सेवाधारी, बिल्कुल सेवा नहीं करता था, तो बाबा उन्होंने कहा दादी, और कोई था ही नहीं, बस तीन ही लोग थे वो टाइम पे, वो सेवाधारी एक था, एक गोपाल भाई थे, दादी थे। तो उन्होंने कहा दादी आप ना उसको बोलो थोड़ा सफाई ठीक से करे, वो चाय गिरा देता है, भूल जाता है कुछ काम बोलो तो। तो दादी ने बोला मैं बोल दूंगी उसको। तो लगा बोल देंगे। तो फिर एक हफ्ते बाद पूछा दादी आपने बोला? नहीं नहीं बोला, अभी बोल दूंगी ठीक है। और दो हफ्ते के बाद बोला तो दादी आपने बोल? तो नहीं बोला ही अभी तक, अभी तक वो वैसी गलती कर रहे हैं। दादी ने कहा ठीक है बाद में बोल दूंगी जब भी टाइम मिले। तो एक महीना दो महीना हो गया, तो इनको गुस्सा है दादी आप बोल क्यों नहीं रहे उसको। तो बोले उसका अगर वो स्वभाव ही है तो मेरे बोलने से क्या होगा, तुम उसको मान लो, खुद ही जाके लेके आ जाओ। वो अगर भूल जाता है चाय बोला दूध लेके आता है, तुम ही जाके लेके आ जाना बस।
भाई दादी हमारा मान समान कैसे किसको
ये बोलने के बाद अगर वो नहीं करता तो
उसको
बोल
चले रेडीमेड स्टेज है, ये बहुत ही वेरी हाई स्टेज है। ये भी बोलना भी गलत है, ये भी बोलना भी दुख देना।
तो अपना देख
रहे हैं
हम, लेकिन हम एक
क्यों
बोले भैया
इवन जब मुंबई में बॉम्ब स्पॉट हुए थे 2003 में या कब, तो कई जगह योग हुए थे, तो वो जो लोग पीड़ित हुए ना उसमें, तो वो दादी के पास भी गए, प्रकाश मेरी दादी के पास भी गए थे कि हमने ऐसे ऐसे योग किया सेवा की। तो दादी ने कहा इस सब जो कुछ हुआ बॉम्ब स्पॉट, इसमें सबसे ज्यादा दुख कौन आत्मा है जिसने वो किया, उनकी सेवा की, उनको सकाश दिया, जितनी आत्माएं मरी उसमें, जितनों ने शरीर छोड़ा, वो सबका बोझ, उनके जो परिजन है रिलेटिव है, वो सारे क्या सोच रहे हैं, इन्होंने किया, इनको पकड़ो इनको मारो। तो वो सबकी बद्दुआ उन आत्माओं के पास है जिन्होंने ये किया, तो क्या उन आत्माओं को सकाश थी, क्योंकि सारी प्रोसेस में सबसे ज्यादा दर्द उन आत्माओं को
करने वाले वो।
तो ये कहना भी कि इनका ये तो कर्म ही ऐसे किए मिलना ही चाहिए, ये भी नहीं, इसके भी ऊपर शापित। और ब्राह्मण आत्मा के मुख से अगर कुछ निकल जाता है वो तो हो जाएगा, क्योंकि हम पुण्य आत्माएं हैं।
साधारण नहीं,
वैसे गलत काम करने वाला भी ड्रामा में तो राइट ही है, राइट है।
ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं है, अगर ड्रामा में ये हमको हमारी दृष्टि ऐसी रखनी है, वो हो है या नहीं वो छोड़ दो, पर हमको हमारी स्थिति बनाने के लिए ये दृष्टि रखती है कि ड्रामा में जो हो रहा है वो राइट है, जो हो रहा है वो सत्य है, जो हो रहा है वही सत्य है, जो हो रहा है वही होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं होना है। हमको किसी के भी दोष नहीं देखने, किसी की भी निंदा नहीं करनी,
बोलना भी नहीं,
वर्णन भी नहीं करने को बोला ना बाबा ने लास्ट संडे को। वर्णन भी करते हो तो तुम अपने आप को वंचित आत्मा कर देते हो, तुम साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते अगर तुम वर्णन करते हो,
ड्रामा में
टाइम वेस्ट करते हो,
नुकसान हो रहा है तो जहाँ हम उसको रोक फेंक,
वो रोके हम, बालक और मालिक वाली बात है। हाँ वो तो है, ड्रामा शब्द देखो, ब्राह्मण आत्मा जो है, ब्राह्मण आत्माएं दो शब्दों का सबसे ज्यादा मिसयूज करते हैं, एक ड्रामा और दूसरा श्रीमत। श्रीमत सुविधाजनक श्रीमत, अपनी सुविधा के अनुसार श्रीमत को मॉडिफाई करना, उसको कहते हैं फिलोसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, फिलोसॉफी ऑफ सुविधाजनक सिद्धांत। ये श्रीमत है, उसको अपनी सुविधा के अनुसार मॉडिफाइड करके और उसके ऊपर दृढ़ रहना फिर कि ये ही कहा है बाबा ने।
और बाबा वो कहता भी है समय अनुसार, क्योंकि
वो है वो अपनी आधार से और उसको सत्य सिद्ध करना, ये है सुविधाजनक। और दूसरा शब्द है ड्रामा। ये दो शब्द बाबा ने एक मुरली में पूछा था कि ड्रामा शब्द कहने के अधिकारी कौन है। ड्रामा ऐसे सब कोई भी उठ के नहीं कह सकता ये तो ड्रामा है, जो संपूर्ण देही अभिमानी है, जो निरंतर बाप की याद में, वही ड्रामा शब्द का उपयोग करे, बाकी कोई भी आत्मा नहीं कर सकता।
मुरली में बोला ना,
कोई भी ऐसे ड्रामा शब्द का यहाँ वहाँ कुछ भी हो गया कि ड्रामा, कुछ भी हो गया ड्रामा, देखेंगे ड्रामा में होगा। तो ये जो इस तरह की जो भाषा है ना, ये ड्रामा शब्द का उपयोग सब नहीं कर सकते। जो देही अभिमानी है, जो निरंतर बाप की याद में, वही ड्रामा शब्द का उच्चारण करें मुख से, नहीं तो नहीं। वो है हाँ वो अपने लिए है, दूसरों को ज्यादा सुनाने के लिए नहीं है ड्रामा। ड्रामा का ज्ञान हमारे अपनी स्थिति के लिए है, वो गलत हो रहा है एक्सेप्टेड, वो गलत है, परंतु हमको ये नहीं सोचना है कि वो गलत है, क्योंकि हमको हमारी स्थिति, क्योंकि वो अगर हम गलत देखेंगे तो हमारी स्थिति डाउन हो जाएगी। अपनी स्थिति को मधु समान मीठी बनाना है तो 1 जनवरी 1995 की मुरली का जो चार्ट लगा है ना सब जगह, बाबा का फोटो है बीच में कई जगह है वो,
एक रस
क्या एक रस स्थिति, किसी सुनी सुनाई बातों को नहीं सुनो, कोई क्या सुनाता है तो किसी को अभी दोष नहीं है, किसी पर भी क्योंकि तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है, हर एक एक्टर का पार्ट विशेष है, ड्रामा एक्यूरेट है। तो ये अगर साक्षी होकर देखेगी जो आत्मा, उसी की स्थिति मधु समान मीठी बनेगी। तो हमको बाकी का छोड़ो, वो क्या है राइट है रॉन्ग ये जजमेंट ही छोड़, हमको हमारी स्थिति ठीक रखनी है तो उसको निर्दोष ही देखना पड़ेगा, उसका कोई दोष नहीं है। किसी का बम बनाने वाले मारने वाले बाबा ने तो खुद कहा मैं आया हूँ संसार का विनाश करने, मैं अर्जुन आज की मुरली में तो मैंने इन सबको पहले से मार के रखा है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो,
आग लगा के ले
जाऊं मैं तुम्हारे शरीरों को, आग लगा के तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। तुम मानो या ना मानो, चाहो या ना चाहो, मैं तुमको ले जाऊंगा जबरदस्ती। रमणीक है ना बाबा की, सागर है, सागर की नदी है, लहरें कभी ऐसी कभी ऐसी, कभी कुछ बोलेगा कभी बोलेगा तुम्हारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन, ऐसे कैसे बोल सकते हो, कभी बोलेगा ये ब्रह्मा को याद किया तो नर्क में जाओगे, कभी बोलेगा ये ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है तुमको, तो केवल एक निराकार को याद करना है, मम्मा बाबा को तुमको याद नहीं करना, ऐसे भी
ऊपर में याद,
सब 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 प्रकार की बातें। अच्छा वो बना है उसके
लिए।
चलो हो गया, और एक पॉइंट था वो, कोई कोई बच्चियां कहती है मेरा तो हड्डियां दुखती है, मेरे तो कमर दुखती है, मैं तो बड़े घर की हूँ, ये भी देहभान है, ये भी नहीं होना चाहिए। वो भागने में ही था, ऑनेस्ट वाला जो था नहीं कर सकते तो ये करो, पर वो कहेंगे मेरे को ये होता है,
मेरी हड्डियां दुखती हैं,
कैसे करूं,
बड़े घर की, हां बड़े घर की।
अच्छा ओम शांति,
थैंक यू।
ये हमारे ज्ञानेश्वर भाई है हॉस्पिटल के, उनके पिताजी को अभी कल परसों ही ब्रेन में ट्यूमर आया है कैंसर, तो उसका कल ऑपरेशन है, तो हम एक मिनट उनके लिए भी योग करेंगे। नहीं नहीं वो उधर है नागपुर में है।
जैसी माँ का भी